તારીખ 21/7/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 738 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 136
અપૂર્વ અવસર કાવ્ય છે આ પદ કૃપાલુ દેવે અંદાજે લગભગ 30મા વર્ષમાં લખ્યું છે. ચોક્કસ સમય મળતો નથી. પાનું 563 પત્રાંક 738 738 આ પદ જે સંજોગોમાં લખાયું છે એનો થોડો આપણે પૂર્વ ભૂમિકા વિચારીએ. હું કૃપાલુ દેવ સાધક દશામાં આવ્યા પછી મને દરેક ભાવના ભાવતા હતા. પ્રત્યેક સાધક સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થાય એની રુચિ સંયમ પ્રત્યે વિશેષ પ્રકારે જાય છે. પરિણામ જ્યારે આત્મામાં સંયમિત થાય છે ત્યારે બાહ્ય સંયમ પ્રત્યે પણ એમનો વિકલ્પ ચાલે છે. એટલું જ નહીં, પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં હંમેશાને માટે સ્થિર થઈ જાય, લીન થઈ જાય અને આત્માનંદને ભોગવતા જ રહે એવી જે એમની ભાવના હોય છે એ ભાવના ગ્રસ્ત દશામાં પાર પડતી નથી. ગ્રસ્ત દશામાં સાધકને અનેક પ્રકારનો વ્યાપાર વ્યવસાય અને ઘરકામ સમાજના કામ વ્યવહારિક સંબંધો એ એટલી બધી ઝંઝટ છે, એવી ઝંઝાળ છે, એ ઝંઝાળથી એ કંટાળેલા હોય છે, કંટાળી જાય છે, એ બધો સહન કરી શકવાની શક્તિ આને નથી એવું લાગે છે. અને વર્તમાન પરિસ્થિતિ ઉપર એમને ખૂબ જ વૈરાગ્ય આવે છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિથી છૂટવા માટે છૂટું છૂટું પરિણામ થાય છે એવા કોઈ વિશેષ વૈરાગ્યના કાળમાં આ પદ લખાયેલું છે. વહેલી સવારથી એ વૈરાગ્ય ચાલુ થયો હશે કે આગળ કેટલા દિવસથી ચાલુ થયો હશે એ કહેવું મુશ્કેલ છે. પણ સવારના ફોનમાં એમના માતુશ્રી ઘરના ફળિયામાં આંગણમાં ખાટલો ઢાળીને બેઠેલા એ પોતે પણ લટાર મારતા મારતા ત્યાં આવીને બેસી ગયા પાંગત ઉપર. પાંગત એટલે ખાટલાના છેડે જ્યાં પગ રહે છે, જે બાજુ પગ રહે તેને પાંગત કહે છે. ત્યાં ઘણા કાછું હોય છે, ત્યાં આવીને બેસી ગયા છે. અને પછી આ કાવ્યની આ પદની સ્ફૂર્ણા થઈ અને એક બેઠકે 21 કડી લખી છે આ પદની. કોઈને હિન્દી મેં કિસી કો શાયદ પ્રશ્ન મુતા હૈ હોગા કે યે મુનિ દશા કી બાત મેં હમારા ક્યા પ્રયોજન હૈ. ઠીક હૈ, એ પ્રશ્ન હો સકતા હૈ. લેકિન हर भूमिका में वैराग्य होता ही है। उतना ही नहीं, भूमिका ही वैराग्य से चालू होती है। जब कोई जीव अज्ञान और दर्शन परिसर में आता है और इस परिसर की वेदना को भोगता है तब क्या होता है? उदासीनता, सर्वत्र उदासीनता और वैराग्य के परिणाम हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जीव व्यवहारिक परिणामों में रक्त रहे। रक्त रहे मैंने रस वाले परिणाम करें और उसको पारमार्थिक कुछ लाभ हो जाए, ये कभी बन सकता नहीं है। ये कभी नहीं बनता। इसलिए मोक्ष मार्ग को हो या मोक्ष मार्ग के पहले आने वाली यथार्थ मोक्ष की भूमिका को हो, दोनों में वैराग्य से ही ये भूमिका चल दोनों चालू होती है। मोक्ष मार्ग के प्रारंभ की भूमिका भी में वैराग्य बहुत होता है और मुमुक्षुता की भूमिका में भी वैराग्य बहुत होता है। मुनि दशा में तो उत्कृष्ट वैराग्य है। तो मुनियों को उत्कृष्ट वैराग्य कैसा होता है इसका चितार, हूबहू चितार इस पद में कृपालु देव ने अपनी भावना के द्वारा किया है कि मेरी ऐसी भावना है। वो अपना मुनिपद का चित्र कैसे देखते थे, भावी मुनिपद वर्तमान में कैसे देखते थे, वो बात यहाँ प्रत्यक्ष दिखने में आती है। और हमारी भूमिका का वैराग्य को भी इससे और वर्धमानता प्राप्त होती है, वैराग्य बढ़ता है, इतना प्रयोजन यहाँ लागू पड़ता है। अपूर्व अवसर एवो प्यारे आवश्य प्यारे थेषु बाह्यांतर निर्ग्रंथे, पता साथे बोलिए।
अपूर्व अवसर एवो प्यारे
पूर्व मैंने ऐसा मुनिपद कभी यथार्थ जीव को आया नहीं जिसको जिनागम में भावलिंग कहते हैं। जहां भावलिंग होता है वहां द्रव्यलिंग तो होता ही है। तो ये दोनों बात चलेगी इस काव्य में, इस पद में, कि मेरे भाव कैसे होंगे और मेरी बाह्य दशा भी कैसी होगी, ये दोनों भाव चलने की बात करेंगे। ये दशा अपूर्व है। हाँ, द्रव्यलिंग है वो अनंत माराया है। हमारे जीव ने अनंत बार जिन दीक्षा ग्रहण की है, नग्न दिगंबर होकर के पंच महाव्रत 28 मूल गुण का निरतिचार प्रतिपालन भी किया है और पुण्य का इतना थोक बांधा है कि इसके फल में 31 साल की देवलोक की नवे ग्रेवक की स्थिति को पहुंचा है, अनंत बाद फिर वहां से संसार में परिभ्रमण चालू हुआ है, क्योंकि दृष्टि नहीं मिली, यानी वो अपूर्व नहीं है, द्रविलिंग अपूर्व नहीं है, उत्कृष्ट पुण्य हुआ वो भी अपूर्व नहीं है, ये पूर्वानुपूर्व है, यहां वो भावना नहीं। हमारी पवित्र वितराग दशा, जिस दशा में हम आत्मा में झूलते रहे, झूमते रहे, ऐसी दशा कब आएगी, वो अपूर्व है। सम्यक दर्शन भी अपूर्व है, और सम्यक दर्शन के साथ सम्यक दर्शन पूर्वक छठवां सातवां गुण स्थान जो होता है, जिसमें मुनिराज क्षण क्षण में स्वरूप में लीन हो जाते हैं, शास्त्र लिखेंगे तो लिखते लिखते लीन हो जाएंगे, आहार लेंगे खड़े खड़े, बैठ के आहार नहीं लेते मुनि, ये मूल गुण में है, क्योंकि बैठ के आराम से भोजन लेना मुनि दशा में संभवित नहीं है, उतना विकल्प ही नहीं आता है कि आराम से भोजन करें, 32 कवल से ज्यादा खाते नहीं, कवल मैंने कोड़िया मैक्सिमम, मिनिमम एक कवल भी लेकर के छोड़ देंगे, हो सकता है अगर विकल्प छूट गया तो छूट गया, खड़े खड़े आहार लेते हैं, तो उस वक्त भी लीन हो जाते हैं स्वरूप में, खाते खाते निर्विकल्प दशा में आ जाता है, अंदर में चैतन्य पिंड देह से भिन्न हो जाता है, देह है कि नहीं ये पता नहीं चलता, शुद्ध उपयोग में 5 इंद्रियों और 6ठे मन का उपयोग छूट जाता है, चलते चलते खाते खाते सोते हुए भी वो घंटा भर सोते हैं, 1 बजे करीब के आसपास में 12 बजे के बाद वहां तक तो ध्यान में बैठते हैं, वो भी करवट मामूली निंद्रा ऊपर ऊपर की आती है, उसमें भी लीन हो जाते हैं स्वरूप में, इतना जागृत दशा है। 2400 घंटों क्षण क्षण में स्वरूप में लीन हो जाए और आत्मानंद को भोगते रहे, और केवल ज्ञान लेने का परमानंद का पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की रम झट चले, ऐसी अपूर्व दशा हमारी कब आएगी, ऐसी भावना करते हैं। सम्यक दर्शन के लिए तो अपूर्व पुरुषार्थ होता ही है, लेकिन सम्यक दृष्टि को यह लगता है, ये दृढ़ दृष्टि प्रकाश में दिया है बाबू जी, कि सम्यक दर्शन के लिए तो कम पुरुषार्थ है, चारित्र के लिए बहुत पुरुषार्थ होता है, तो वो पता चलता है कि मुनि दशा आती है तो कितना तीव्र पुरुषार्थ के बाद ये मुनि दशा का प्रारंभ होता है। जब दीक्षा की विधि चलती है तब तक तो चतुर्थ या पंचम गुण स्थान में होते हैं साधक, उस वक्त तो पचकाण करते हैं, पचकाण लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम निरंतर शुद्धोपयोग में ही रहेंगे, हमारे स्वरूप से बाहर हम कभी निकलेंगे ही नहीं, विकल्प में इतना जोर है, विकल्प के काल में पुरुषार्थ की थनगनाट उतनी है परिणति में, कि विकल्प में ये विकल्प आता है कि हम हमेश के लिए लीन हो जाएंगे, हमारे स्वरूप में बाहर ही नहीं निकलेंगे, और दीक्षा विधि पूरी होने के बाद मुनिराज जब ध्यान में कपड़े वपड़े छोड़ करके जब नग्न होकर के ध्यान में बैठते हैं, सीधे सप्तम गुण स्थान में आते हैं, चौथे ये पांचवें गुण स्थान में है, सीधा ही सप्तम गुण स्थान में आते हैं, क्योंकि छठा संकल्प दशा का गुण स्थान है, पहले छठा नहीं आता है, मुनि को पहले सातवां गुणस्थान आता है, फिर उधर उपयोग छूट गया तो छठे गुणस्थान में आएंगे। और किसी को नहीं छूटा, जैसे भरत चक्रवर्ती, वो मुनिराज हुए, सप्तम गुणस्थान में आए, फिर छठवें में आए नहीं, सीधे ही श्रेणी लगा दिया, 8, 9, 10, 12 अंतर्मुख में 13वां गुणस्थान, अरियंत दशा, आए नहीं छठे में। पंच महाव्रत समिति गुप्ती 28 मूल गुण का व्यवहार के परिणाम ही नहीं हुए, सीधे ही आ गए। तो जब वो बचकान लेते हैं तो उतना बल है कि बैठते ही निर्विकल्प दशा सप्तम गुण स्थान के योग्य हो जाती है। ऐसे तो निर्विकल्प दशा चौथे पांचवें में आती है, लेकिन सप्तम गुण स्थान के योग्य लीनता आती है ना, और भाव लिंग को मुनिराज प्राप्त होते हैं। तब वो उनकी दशा बाह्यांतर निर्ग्रंथ है, अंतरंग निर्ग्रंथता हो और बाह्य में निर्ग्रंथता नहीं हो, ऐसा मुनि पद नहीं कभी होता, इसलिए दोनों शब्द का प्रयोग किया है। बाह्य में भी निर्ग्रंथता है, निर्ग्रंथता मतलब कि चारित्र मोह का भी अटैचमेंट नहीं है कोई, दर्शन मोह का तो अटैचमेंट छूट ही गया चतुर्थ गुण स्थान में, अब रहा चारित्र मोह। तो चारित्र मोह जहां तक जीवित है तो गृहस्थ के योग्य कारोबार चलता है, लेकिन सुहाता नहीं है, अभिप्राय विरुद्ध है, कैसे है, अभिप्राय से विरुद्ध है, इसलिए पुरुषार्थ भी चलता है, भावना भी चलती है, और आगे बढ़ते हैं तो मुनि दशा को प्राप्त कर लेते हैं। जब मुनि दशा को प्राप्त करते हैं तो किसी भी परिवार के एक सदस्य के साथ या जगत के एक सदस्य के साथ कोई संबंध नहीं रहता, राग का संबंध सर्वथा छूट जाता है, किसी के प्रति राग नहीं। जब किसी के प्रति राग नहीं तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी के प्रति द्वेष भी नहीं होता, क्योंकि राग द्वेष तो वहां होता है जहां राग होता है। तो उनका राग छूट जाता है, ऐसा होता भी है कि मुनि दीक्षा के बाद इनके परिवार इसकी वंदना करने को भी आते हैं, और वंदना करते हैं तो प्रदक्षिणा करते हैं, फिर आके वंदना करते हैं, फिर प्रदक्षिणा करके वंदना करते हैं, उनका उपयोग भी जाता है, ये लोग वंदना कर रहे हैं। लेकिन वहां वो परिवार वाले नहीं दिखते, ये मेरी पत्नी है ऐसा नहीं दिखता, ये मेरी माँ है ऐसा नहीं दिखता, ये मेरे पिता है, पुत्र है, बहन है, भाई है, कुछ नहीं दिखता। जैसे दूसरे जगत के अनजाने लोग दिखते हैं वैसे ही जाने माने दिखते हैं। इसको कहते हैं कि सर्व संबंध का बंधन तीक्ष्ण रूप से छेद कर दिया, और वही बाह्य निर्ग्रंथता है। बाह्य में मोह की राग की ग्रंथि नहीं पड़ती, वहां एकदम वितराग दशा में जूझते हैं, मैं ज्ञान मात्र हूं, ज्ञाता दृष्टा मात्र हूं, जगत के सचेत अचेत सभी पदार्थ मात्र ज्ञेय है, मात्र ज्ञेय के अलावा मेरे लिए कुछ नहीं है, न कोई इष्ट है, न कोई अनिष्ट है, न कोई संबंधी है, न कोई असंबंधी है, कोई बात नहीं है मेरे लिए। अभ्यंतर निर्ग्रंथता मुनि दशा के लायक प्रकट होती है तो बाह्य निर्ग्रंथता भी सहज होती है। क्योंकि परिणाम का संबंध परद्रव्य के साथ होता है, मलिन परिणाम रागादि परिणाम का संबंध होता है वो परद्रव्य के साथ होता है। हाँ, अभिप्राय का गढ़ना मोक्ष की भूमिका से चालू हो जाता है। एक पीछे एक अभिप्राय बदलता जाता है। प्रारंभ से दर्शन अज्ञान परिषद की वेदना में जुड़ना में आया तब से ही अभिप्राय पलटने का प्रारंभ प्रोसेस चालू हो जाता है। पूर्णता के लक्ष्य में तो बहुभाग अभिप्राय का चेंज हो जाता है और प्रतिबंध और स्वच्छंद है वो मिटता है और जीव को अपने स्वरूप के प्रति परिणाम की गति चालू हो जाती है। अल्पकाल में स्वरूप के प्रति गतिमान होने वाले जो परिणाम हैं वो पहुंच जाते हैं स्वरूप में। मुनि दशा में ये भावना भाते हैं कि बाह्य और अभ्यंतर किसी का संबंध नहीं रहे, हम अकेले जंगल में चले जाए, ऐसा वैराग्य आता है कि किसी के साथ क्या ज्ञानियों को मुमुक्षुओं के साथ लगाव रहता है कि नहीं रहता है, अंदर से नहीं है ऊपर ऊपर से है, अंदर से वो संबंध नहीं रहता है, इसलिए मुनि पद आना उनके लिए आसान है। उसी वक्त में वो चाहते हैं कि ये सर्व संबंध को छोड़ करके हम अकेले कहीं चले जाए, हमें किसी से क्या लेना देना है, हमको तो हमारे आत्मा के साथ संबंध है, वो तो अभेद संबंध है, संबंध भी का संबंध शब्द भी लागू नहीं कर सकते ना, अभेदता है स्वरूप से, तो बस उसमें जमे रहे, बाहर निकले ही क्यों, और वो संभव कब है कि भाई में भी कोई संबंध का विकल्प नहीं हो तब। परिवार से तो प्रतिबंध छुटा ही है ज्ञानी को, अपनापन परिवार से होता नहीं, चारित्र मोह का विकल्प आता है लेकिन दृष्टि में तो अपनापन होता ही नहीं। लेकिन मुमुक्षुओं से साधर्मियों से भी वो छूटना चाहते हैं, ठीक साधर्मियों से भी छूटना चाहते हैं, अकेले अपना काम करे, बस एकांत में रह करके अपना काम में लगे रहें और अपना जल्दी से जल्दी शीघ्र ही हमारे लक्ष्य को पूर्ण कर लें। इस तरह के परिणाम कृपालु देव को भी उठे हैं, उनके संग में भी कहीं मुमुक्षु आए हैं, फिर भी लिखते हैं कि बाह्यांतर ग्रंथ होना है, बाह्य में भी कोई ग्रंथि नहीं चाहिए। ज्ञानी के पास जैसे मुमुक्षु आते हैं वैसे मुनियों के पास भी आते हैं, लेकिन मुनिराज का उपदेश देने का कोई बंधन नहीं होता। नगर में आ जाए आहार लेने के लिए, इसके सिवा तो आए ही नहीं, पर वहां का कोई राजा महाराजा हो विनती करे, महाराज उपदेश सुनाओ कुछ हमारे आत्मकल्याण के दो बातें, कृपा करके अनुग्रह करके हमको सुना दो, विकल्प आया तो सुनाएंगे, विकल्प नहीं आया तो राजा महाराजा इनके लिए कोई है नहीं, उनके लिए तो सब ज्ञान के ज्ञेय है। विकल्प आ गया तो आ गया, नहीं आया तो वो चल जाएंगे, पीछे पीछे जाने वाले भी मिलेंगे कि चलो अभी विदेश का योग नहीं है, पीछे पीछे चले जाएं, कहीं आसन ग्रहण करेंगे तो फिर रिक्वेस्ट करेंगे, फिर भी ध्यान में लग गए तो लग गए, और विकल्प आया तो दो शब्द उपदेश का दे दिया तो दे दिया। कभी बंधन में नहीं आते वो। बाह्य बंधन में आना उस सग्रंथता है, चाहे सम्यक दृष्टि हो तो भी, और बाह्य बंधन रहित होना वही बाह्य निर्ग्रंथता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी गृहस्थ दशा में प्रारब्ध के बंधन को स्वीकार लेते हैं, जबकि उनको अंदर में ये चूभता है। गुजराते में आप खूचे छे हम कहिए छे, ये चूभता है कि मेरा निरालंब निरपेक्ष परमात्म पद है, उसको ये बंधन, ये बंधन की परिस्थिति जब असह्य हो जाती है तब वो निकल जाते हैं। अंदर में पुरुषार्थ उतना जोर करता है, पता चल जाता है कि हमारा ध्यान लगेगा सीधा ही सप्तम गुण स्थान में आरूढ़ हो जाएंगे, वो पहले से पता चलता है। जब मुनि पद के वो बाह्य क्रिया चलती है, दीक्षा की विधि, दीक्षा की भी विधि होती है, तो विधि चलती है उस वक्त उनको पता है कि परिणाम स्वरूप में दौड़ लगाते रहते हैं। अभी परिणाम स्वरूप के प्रति दौड़ लगाएंगे, जैसे कोई रेस में तैयारी करते हैं ना, हाँ ऐसी तैयारी रेस के पहले होती है कि नहीं है, तो होती है दौड़ लगाने की, ये तैयारी इसकी दीक्षा की विधि की भूमिका में हो जाती है, तो सीधे ही सप्तम गुण स्थान में आ जाते हैं। ऐसी जो निर्ग्रंथता है वो बाह्य निर्ग्रंथता है, किसी का समझ नहीं रहता, तीक्ष्ण मैंने पूरा का पूरा छेद लेते हैं, थोड़ा सा लगाओ किसी से रह जाए सो बात भी नहीं है, तनिक भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, किसी के साथ नहीं, एक भी जीव के साथ नहीं रहता, और मन के कोने में भी नहीं, मन से वचन से काया से कहीं भी नहीं। ऐसी दशा की भावना भाई है, और यही महान पुरुषों का, तीर्थंकर आदि महान पुरुषों का यही मार्ग है। अब तो काल बहुत हीन आ गया, मुमुक्षु की भूमिका का उपदेश देना पड़ता है, ज्ञानियों को भी। पहले तो मुनि दशा का ही उपदेश दिया करते थे, क्योंकि ज्ञानी बहुत थे, सम्यक दृष्टि तो बहुत थे, तो मुनि दशा का उपदेश चलता था। फिर काल हीन हुआ तो सम्यक दर्शन का उपयोग चला, उपदेश चला समय सारादि में। अब तो वो भी कठिन बात हो गई, अब तो मुमुक्षु की भूमिका में क्या होना चाहिए, अरे उसमें प्रारंभ कैसे होना चाहिए ये चर्चा करनी पड़ती है, शुरुआत कैसे करें। ऐसे दिन प्रतिदिन हीन पुरुषार्थ वाले जीव होते हैं, जो बाह्य बाधक परिणामों से उतने घिरे हुए रहते हैं कि जिससे हीन सत्व हो जाते हैं, पुरुषार्थ अपना उठा नहीं सकते सही दिशा में, हीन सत्व कहते हैं उनको, जैसे सत्व खत्म हो गया हो। तो ये महान पुरुषों का पंथ बोला है कृपा गुरु जी, महत्पुरुष के पंथ, ये मार्ग तीर्थंकर आदि महान पुरुषों का है, खुद को महान पुरुष नहीं कहते, तीर्थंकर आदि महान पुरुषों के मार्ग पर हम कब आएंगे, ऐसा अपूर्व अवसर हमको कब मिलेगा, कब आएगा, इसकी जंखना चलती है। बात वो है अंदर में कि सम्यक दर्शन का जो पुरुषार्थ है, इससे मुनिपद का जो पुरुषार्थ है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। जाति परिणामों की एक सी है, सम्यक जाति के परिणाम होने के बावजूद भी डिग्री में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए इसकी भावना आए बिना नहीं रहती। जैसे कोई 50 विद्यार्थी परीक्षा में पास होते हैं तो कोई पासिंग नंबर और दूसरे नंबर में उतना अंतर नहीं है, लेकिन पहले नंबर और 50वें नंबर में तो बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे उनको मालूम पड़ता है कि कितना महान पुरुषार्थ है ये, हमें तो वो चाहिए, हमको तो ये बात जो है कुछ नहीं है। तो बाबू जी लिखते हैं, सम्यक दर्शन हो गया तो क्या हो गया? सम्यक दर्शन हो गया तो इसमें क्या हो गया? ये तो कुछ नहीं है। द्वीप के बाहर जो समुद्र है उसमें असंख्य सम्यक दृष्टि तिर्यंच मौजूद है, जलचर प्राणी है, फिर भी सम्यक दर्शन है, कोई पंचम गुण स्थान में भी है। तो सम्यक दर्शन हो गया तो क्या हो गया? ऐसे लेते हैं, जो कुछ कमाया वो गिनते ही नहीं। व्यापारी ऐसे ही करते हैं, कितना बाकी है वही गिनते हैं। ऐसे भावना ऐसी होती है, तभी ऊपर की लाइन मिलती है। दृष्टि ऊपर है तो परिणाम ऊपर जाएंगे, दृष्टि नीचे है तो परिणाम गिरेंगे ही गिरेंगे। दूसरा पद साथ में ले ले,
सर्वभाव की
कौन से भाव? कि जितने भी आत्मभाव से अन्य है वही सब अन्य भाव है, आत्मभाव एक है और सब अन्य भाव है। जितने भी मुनि को तो अशुभ परिणाम तो होते ही नहीं, सर्व सावद योग का त्याग होने से कोई पाप क्रिया नहीं, न कोई पाप के परिणाम का अंश भी होता है। वैसे तो आहार लेना या कोई भी पुद्गल परमाणु की इच्छा होना ये अशुभ परिणाम है, परद्रव्य की इच्छा मात्र अशुभ परिणाम है, पंचेंद्रिय के विषयों में आहार आदि जो भी है। फिर भी मुनिराज को आहार के परिणाम में अशुभ पड़ा नहीं है। क्यों? कि वो संयम हेतु देह को टिकाना चाहते हैं, जो मुनि योग्य दशा के संयम होता है उस संयम के बाहर परिणाम नहीं चले जाए, क्रिया भी नहीं चली जाए अशक्त होकर के, शरीर से अशक्त होकर के क्रिया का प्रतिपालन नहीं हो, इसलिए वो आहार ग्रहण करते हैं कि उस संयम का पालन यथार्थ रूप से इस भूमिका का कर सकें। इसलिए उनके जो आहार है वो शुभ परिणाम में जाता है, अशुभ परिणाम में नहीं जाता। क्रिया आहार की सबों की है, लेकिन मुनिराज की क्रिया अशुभ नहीं गिनी जाती, परिणाम भी अशुभ नहीं है। इतना मंद कषाय है, मंद कषाय को शुभ कहते हैं, तीव्र कषाय को अशुभ कहते हैं। परिणाम की क्रिया इतनी मंद कषाय वाली है तो उसको शुभ भाव गिने जाते हैं, अशुभ भाव गिने नहीं जाते। यहां से लेकर के पंच महाव्रत के 28 मूल गुण के व्यवहार के जितने भी मुनि दशा योग्य जिनागम में जिनेन्द्र परमात्मा ने कहे वैसे व्यवहार के परिणाम उससे भी उदासीन हो जाते हैं और स्वरूप में लीन होते रहते हैं। अगर वे परिणाम से उदासीन नहीं रहे या अपेक्षित रहे तो स्वरूप में लीन नहीं हो सकते। स्वरूप में लीनता कब होती है, एक प्रश्न उठाए कि किसी भी जीव को स्वरूप लीनता कब होती है कि वर्तमान में चलते हुए शुभ भाव की उपेक्षा उदासीनता होवे तब। निर्विकल्प शुद्धोपयोग जो है जिसको स्वरूप ध्यान कहते हैं, वो स्वरूप ध्यान के पहले नियम से शुभ भाव होते हैं, अशुभ भाव नहीं होते हैं, क्योंकि अशुभ भाव के बाद सीधा शुद्ध परिणाम किसी को आ नहीं सकता। तीव्र कषाय मंद कषाय में परिवर्तित होता है और फिर मंद कषाय छूट करके शुद्धोपयोग होता है। उसमें भी उत्कृष्ट शुभ होता है, फिर शुद्धोपयोग होता है, और उत्कृष्ट शुभ में अपना जो निज परम पद है उसका ही सूक्ष्म विकल्प चलता है, फूल विकल्प भी नहीं चलता। चिंतन का, घोलन का, मनन का सूक्ष्म शुभ उपयोग चलता है, उत्कृष्ट शुभ है वो उस भूमिका का। उससे जब उपेक्षित हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, तब शुद्ध उपयोग की बारी आती है। उसकी अपेक्षा रही तो शुद्धोपयोग आएगा ही नहीं। इसलिए कोई ऐसा अभिप्राय रखें कि चलो हम स्वरूप का चिंतन तो करते हैं ने, हम कोई दूसरे पदार्थ का तो चिंतन नहीं करते, बाह्य पदार्थ का तो चिंतन नहीं करते, अंतरंग शुद्धात्मा है उसी का हम चिंतन करते हैं, ये तो अच्छा है ने? ये नहीं, ये भी एक विकल्प है और विकल्प मात्र दुखदायक होता है, उसमें दुख महसूस होता है, पर तो उसे उदासीनता को प्राप्त होकर के शुद्ध उपयोग में आते हैं। ये तो चतुर्थ गुण स्थान में भी ऐसा होता है, तो यहां तो सप्तम गुण स्थान की भावना चल रही है। सर्व भाव से औदासीन्य वृत्ति करी। देखिए मुनि पद की जो बात चल रही है, सामान्य मनुष्य को इनके भावलिंग के परिणाम का अंदाज मिलना भी मुश्किल है, इसलिए कि बहुत अनजाने हैं लोग इस विषय से। ये तो ज्ञानियों की कृपा है कि इसी में, इसके ज्ञान में साक्षात मुनि पद का चित्र आता है। सामने जैसे मुनि खड़े हैं और उनके परिणमन को देखते हैं, ऐसे ही उनको देखते हैं और फिर इसका वर्णन करते हैं, तो मुमुक्षुओं को भी वो बात समझने को मिलती है। वरना उस जाति के परिणाम में आए बिना मुनि पद के अंतर की स्थिति क्या होती है उसका अनुमान कोई नहीं कर सकता। यहां एक बात वो कहेंगे कि बहु उत्सर्ग करता प्रत्येक क्रोध नहीं, वंदे चक्री तथापि न मड़े मान जो, देह जाए फिर भी माया रोम में भी नहीं होगी, और लोभ नहीं चाहे बलवान रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो जाए तो भी, प्रबल सिद्धि निदान। ये मुनिपद को दिखाने के लिए उत्कृष्ट दृष्टांत दिए हैं। इसमें नाप मुनिपद का नहीं है, नाप दृष्टांत का है। ये फुटपट्टी है कि छह इंच वाली बारिश वाली है, मुनिपद ऐसे नापा जाता नहीं है, लेकिन बताए कैसे। ये वितरागता कितनी बेहद है उसको कैसे बताएं, तो छोटी सी फुटपट्टी लेनी पड़ती है, लेकिन इससे मुनिपद नापा जाता नहीं है, और न कोई अनुपम दशा को दिखाने के लिए कोई उपमा मिलती है। तो जो भी फुटपट्टी है उससे थोड़ा बहुत नाप दिखा देते हैं, बाकी इससे ये मुनिपद की अंतरंग दशा का नाप किया जाता नहीं है। तो यहाँ कहते हैं, इसलिए बात को ये कहने का अभिप्राय था इसके पीछे, कि पहले चतुर्थ गुण स्थान में इस जाति के परिणाम आते हैं, उसी की मात्रा डिग्री बढ़ जाती है, ये बहुत बहुत बढ़ जाती है, तब मुनि दशा आती है। तो थोड़ी जाति दिखाने के लिए चतुर्थ गुण स्थान की थोड़ी बात साथ साथ में करनी पड़ती है, वरना मुनि दशा का कोई ख्याल आना भी मुश्किल है। ऐसी अंतरंग कोई अद्भुत दशा होती है, उसको अपूर्व अवसर, हाँ कृपालु देव कहते हैं उसको। क्या कहते हैं कि ये कोई अपूर्व अवसर है, मेरे लिए भी एक अपूर्व अवसर है। सर्व भाव से अवदासीन वृत्ति करी, मात्र देह दे संयम हेतु, मात्र देह, देह भी एक परिग्रह मानते हैं। क्या मानते हैं? देह को भी वो परिग्रह मानते हैं, बाह्य परिग्रह तो मुनि को होते ही नहीं, लेकिन पांच इंद्रिय और छठा मन, इस अंग उपांग की रचना वाला एक पौद्गलिक मूर्ति है देह की, उसमें जिसका उपयोग का फैलाव नहीं है, क्या पांच इंद्रिय और छठा मन के फैलाव रहित एक देह है, खाली खोखा, हाड़ मांस का खाली खोखा पिंजर, हाड़ पिंजर, वो भी एक परिग्रह है, वो भी उसके प्रति भी ममता जिसको नहीं है, लेकिन संयम उसके द्वारा बाह्य संयम निभाया जाता है, उस संयम में बाधा, बाह्य संयम में बाधा आए नहीं आए, इसलिए जो दे रहा तो ठीक है, आ रहा निकाल, एक दफे उसका देना हो जाता है। कितने बार? एक दफे, 24 घंटे में पानी भी एक दफे, आहार भी एक दफे, और वो भी उणोदरी, ऐसा पेट भर के मुनि कभी खाते नहीं, मुनिराज कभी बड़े बड़े पेट वाले नहीं होते, क्योंकि वो तो पेट भर के जो खाते हैं उसको पेट बड़ा होता है, उनका तो पेट भर के खाना होता ही नहीं, इस तरह के ऐशाराम भी उसको है। तो इनके जो शरीर होता है वो सिमेट्रिक होता है या दुर्बल होता है, लेकिन ऐसा जो ग्रस्तों का होता है उस तरह की परिस्थिति नहीं रहती। मात्र देहते संयम हेतु होय जो, अन्य कारण से अन्य कसों कल्पे नहीं, अन्य एक के कारण से दूसरा वो कभी कल्पना, जो मिथ्या दृष्टि को होती है वो तो सम्यक दृष्टि को होती नहीं, मुनि को तो होने का सवाल ही नहीं है। कोई उपसर्ग करे इसलिए परिणाम बिगड़े, अन्य कारण से अन्य कुछ कुछ हो जाए, वो बात है ही नहीं। उपसर्ग परिसर समझाने के लिए शब्द है। किसको? व्यवहारिक जन को व्यवहार से समझाने के लिए है। मुनिराज को उपसर्ग परिसर कुछ है ही नहीं, वो तो ज्ञान के गे है। वो मानते नहीं कि मेरे उपसर्ग कोई कर रहे हैं या कोई मेरे परिसर हो रहा है, ऐसा मानते नहीं, ऐसा जानते नहीं। तब तो क्षण क्षण में स्वरूप में लीन हो सकते हैं, वरना स्वरूप में ऐसी लीनता आए कहां से? चले तो कदम कदम पे निर्विकल्पता आ जाए। पूरा चैतन्य बिंब देह से अलग हो जाए, कोई लगाव नहीं परिणाम का भी। क्यों? कि अन्य कारण से अन्य का कुछ हो ऐसी कोई कल्पना होती नहीं। और जो संयम हेतु से जो देह है उसके प्रति भी किंचित मूर्छा नहीं होती। मुनिराज को भी रोग होता है, पूर्व कर्म के योग से, प्रारब्ध योग से कभी शरीर में रोग भी आ जाता है। लेकिन जिसको देह में मूर्छा नहीं कि मेरा शरीर है, वो रोग के लिए कोई दवाई करते नहीं है। कभी मुनिराज दवाई नहीं लेते, वो विकल्प ही नहीं आता। इस भूमिका में इतनी वितरागता होती है कि उसको शरीर पे मूर्छा ही नहीं होती कि वो दवाई लेने का विकल्प आ जाए। अरे कोई दवाई देवे तो स्वीकार करे नहीं, खुद तो लेवे नहीं लेकिन कोई दे तो स्वीकार करे नहीं। अगर उनको दवाई देना है किसी को तो आहार में मिला करके दे देते हैं, उनको बताए नहीं। आहार दान, औषध दान, औषध दान है, मुनिराज को भी औषध दान दिया जाता है, लेकिन किस तरह से? ऐसे कोई नहीं देते कि आपके लिए ले लो, क्योंकि तो एक दफे आहार लेते हैं, पानी भी एक दफे लेते हैं, तो दवाई भी आहार हो गया, दूसरे दफे आहार तो लेते नहीं हो। और देह की मूर्छा के लिए औषध लेते नहीं, तो ग्रस्त है उसको आहार देते हैं तो उसको दवाई का मिलावट कर देते हैं, तो ऐसे कोई औषध चला जाता है। लेकिन मुनिराज कभी आते हैं कृपालु देव के, वो जो भावना बोध है ना इसमें आता है, तो कोई मुनिराज है उसको कोड हो गया, गलत कोड, बड़ा कोड, हाथ पैर की उंगली गलने लग जाए, छोटे हो जाए, तो कोई देव ने परीक्षा किया कि हम धन्वंतरी वैद्य है, देवलोक से आए हैं, कोई भी रोग को मिटा सकते हैं, आपको ये रोग हुआ है, हमारे पास औषध है, मिटा दे, तो तुम चले जाओ इधर से, तुम ये घर भूल गया, दवाई लेने वाला ये घर नहीं है, तुम यहां से चले जाओ। हम शरीर का रोग मिटाने के लिए मुनिपणा में नहीं है, हम तो भवरोग मिटाने के लिए मुनि दशा में आए हैं। अगर शरीर का रोग मिटाने तो हमारे पास तो लब्धि है, तुम्हारे औषध की क्या जरूरत है? एक मुंह में से थूक की उंगली लगा देंगे तो ये साफ हो जाएगा। 64 रुद्धिधारी मुनिराज होते हैं जिसकी हवा लगे तो कोई भी रोग नहीं रहे, बड़े बड़े रोग मिट जाए हवा लगने से। यहां से हवा आ जाए, उनके शरीर को स्पर्श करके दूसरे को स्पर्श करें, रोग खत्म। ऐसी रुद्धियां होती है लेकिन वो सामने नहीं देखते, रुद्धि है या नहीं है वो ऐसा भी नहीं देखते, प्रयोग करने का तो सवाल नहीं होता। कृपा रुद्धियों को ऐसी कुछ कुछ रुद्धि थी तो लिखते हैं कि कुछ है, लेकिन आज तक हमने कभी स्मरण भी नहीं किया, तो फिर प्रयोग क्रिया होगा वो बात कहने की जरूरत नहीं है। आज जब बात निकली है तो स्मरण में आता है कि ऐसा कुछ है, नहीं है ऐसा ना नहीं देंगे, ऐसा करके लिखा है डबल नेगेटिव, नहीं है ऐसी ना नहीं देंगे, कुछ ऐसा है लेकिन बताया नहीं किसी को। पवित्रता के कारण से ऐसी पुण्य के अनुबंध करने वाली रिद्धि सिद्धि कभी किसी ज्ञानी को होती है, नहीं होती है, होती है इसका कोई महत्व नहीं है। एक शुद्धोपयोगी शुद्धोपयोग के धारण करने वाले धर्मात्मा के चरण में रिद्धि सिद्धि तो आड़ोटे है, क्या बोलते हैं, लौटती है, हिंदी में लौटती है ऐसा कहते हैं ना, उस दिन आड़ोटे है, सामने नहीं देखेंगे। इतने वो स्वरूप में जमे हुए रहते हैं कि इसके प्रति क्या देखना, कि कोई देखने लायक चीज है ही नहीं। जिसके प्रति जगत के जीव पिल्लू की तरह पूंछ हिलाते हैं वो तो इसके सामने भी नहीं देखेंगे। देह पण किंचित मूर्छा न उदरे, बिल्कुल देह के प्रति मूर्छा नहीं होती, देह छूट जाए, रहे नहीं रहे, हमारे लिए समान है। संभव में वो बात लिया है, जीवित के मरने नहीं न्यूनाधिकता, दसवीं कड़ी में वो बात लिया है, तीसरी पंक्ति है, जीवित के मरने नहीं न्यूनाधिकता, जीवन चालू रहे या आयु पूरा हो जाए हमारे लिए तो वो समान है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, शाश्वत हमारा स्वरूप है और अव्याबाद है, तो आयु पूरे होने से हमें क्या बाधा आती है, पर आयु चालू रहने से हमें क्या विशेषता हो सकती है, हमें कोई फायदा नहीं है। आयु से चालू रहने से कोई फायदा नहीं, पर पूरा होने से हमें कोई नुकसान नहीं, ऐसा संभाव में वो रहते हैं। तो देर हो नहीं हो हमें क्या है, एक पड़ोसी है अपने काम से आया था और अपना काम पूरा होकर चला गया, वो पड़ोसी था तो समझदार में उसको पार्श्ववर्ती कहा है, पार्श्ववर्ती बगल में रहने वाला, पार्श्ववर्ती संस्कृत शब्द है अमृतचंद्राचार्य कि तुम एक 6 मास पड़ोसी हो जाने, शरीर का पड़ोसी होकर के 6 मास पुरुषार्थ कर, तुमको सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, गारंटीड है। वो 6 मास तो मैक्सिमम पीरियड है, 6 मास भी नहीं लगता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा किसी का बहुत शिथिल पुरुषार्थ हो तो 6 मास लगेगा, सामान्य शिथिल पुरुषार्थ वाले को भी 1 महीना 2 महीना 3 महीना में हो जाता है, तो 6 महीना तो वह मैक्सिमम पीरियड दिया है, बाकी इससे कम काल में भी सामान्य तो होता है। ऐसे बिल्कुल शरीर के प्रति भी वो उदासीन है, शरीर की कोई परवाह नहीं, खाना कभी नहीं भी आहार का योग होता है, कभी कभी आंख के कोने से में भी विकल्प नहीं आता कैसा क्यों हुआ। देखिए ना ऋषभदेव भगवान का क्या हुआ था, अभी गए धारण करके गए थे, 6 मास तक आहार का योग नहीं मिला, कोई जानते ही नहीं थे आहार के मुनिराज को आहार कैसे देना, और जब कोई जानते नहीं थे तो वो जनाते भी नहीं थे, विकल्प उठता था, नगर में जाते थे वापस चले आते थे, क्योंकि विधि पूर्वक आहार नहीं मिले, आहार लेते नहीं, नवधा भक्ति पूर्वक आहार देने वाले चाहिए। आमंत्रण करके आहार दें, भिक्षा नहीं मांगते, वो लंबात नहीं करते, मुनिराज है वो, कोई भिखारी नहीं होते, मांगते नहीं करते, उनको आमंत्रण करते हैं। आहार शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ये सब है हमारे में, झूठ नहीं बोलते, ऐसा शुद्धता होती है गृहस्थों में। फिर उसके पैर धोते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, फिर आहार देते हैं नवदा भक्ति के लिए। उस तरह से होता है तो आहार लेते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। उपवास हुआ, ऐसा विकल्प भी नहीं, आज आहार नहीं मिला तो उपवास हो गया, वो विकल्प भी नहीं, कुछ नहीं। जैसे कोई पेट भर के बैठा है और आहार का विकल्प नहीं आता, वैसे आहार का योग नहीं मिले तो ऐसी दशा हो जाती है कि जैसे पेट भरा हुआ है, उसका विकल्प नहीं आए, ऐसी अद्भुत दशा की भावना कृपालु देव उठाते हैं इस पद में। यहाँ तक रखें।